ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शिलू दीदी को वैसे तो आप सभी जानते हैं, आप यज्ञ के आदि रत्नों में से एक हैं। फिर भी दीदी का संक्षिप्त परिचय मैं आप सबको देना चाहूंगी। आदरणीय शिलू दीदी, विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का जय घोष करने वाली आदरणीय शिलू दीदी ने सन 1960 में 12 वर्ष की अल्पायु में ही परमात्मा को पहचाना और सन 1969 में अपना सर्वस्व प्रभु पर न्योछावर कर दिया। आज हमको ब्रह्मा कुमारीज के सैकड़ों चेहरे टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं, परंतु टीवी पर परमात्मा प्रत्यक्षता का आगाज करने वाली शख्सियत हमारे शिलू दीदी ही हैं। पांचों महाद्वीपों के 75 देशों में भ्रमण कर आपने सर्वत्र आध्यात्मिकता की अलग जगाई है। ब्रह्मा कुमारीज के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम राजयोग शिविर की आप निर्देशिका हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि आपको स्वयं परमात्मा द्वारा ये वरदान प्राप्त है कि आपकी जीवा पर स्वयं ज्ञान देवी सरस्वती का वास होगा। और सचमुच आपकी ज्ञानमय वाणी अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनी है। सन 1923 में वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित आदरणीय शिलू दीदी के प्रति कुछ भाव सुमन समर्पित कर रही हूँ। दीदी, बोलते हैं आप तो लगता है जैसे ईश्वर गा रहे हैं। सुमधुर वचन तुम्हारे ईश प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। ऐसी प्रेमामय शिलू दीदी को अपने बीच पाकर हम अति हर्षित हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय, डबल लाइट, योग साधना, तपस्या भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य है ना, और उसकी अनुभूति कैसे करें, आज इस विषय पर शिलू दीदी अपने विचार हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय दीदी जी,
आप भी अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम शकुंतला है और मैं इंदौर हॉस्टल, जो कुमारियों का एक युवा सशक्तिकरण केंद्र, यूथ एम्पावरमेंट सेंटर अपने ब्रह्मा कुमारीज का जो इंदौर में स्थित है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और मुझे बाबा की सेवा में समर्पित हुए 36 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम तीन बहनें बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर सविता, जो मधुबन में ही सेवाएं देती है और महिला विंग की जोनल नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैं दूसरे नंबर की बहन इंदौर हॉस्टल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और मेरी तीसरी बहन वो ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC गुड़गांव में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है, उसका नाम है मंजू बहन। और पूरा ही परिवार ज्ञान में चलता है। लौकिक में मैं समर्पित होने के पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, फिर बाबा का ज्ञान मिला तो बाबा का परिचय मिल गया, निश्चय हो गया कि भगवान आया है धरती पर और बाबा हमसे पवित्रता का सहयोग चाहता है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो बस बाबा का आह्वान हुआ और हम तीनों बहनें बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए। ओम शांति।
शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की और दादियों की कर्म भूमि, ऐसी भूमि पर आप सभी पधारे हैं विशेष रूप से योग तपस्या करने। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी, हम सब के साथ हमारी भी, हम हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं समझती हूँ कल्याण ईस्ट या वेस्ट, हाँ दोनों तरफ का कल्याण। तो कल्याण से सभी जो भाई बहने आए हैं, पहली बार पांडव भवन में भट्टी कर रहे हैं, ऐसे है ना, पहली बार कर रहे हैं ना भट्टी। मुझे बता रहे थे कि जुलाई महीने में, लास्ट ईयर कब था, 3 साल पहले, अच्छा 4-5 साल पहले आपका भट्टी या शेड्यूल था जुलाई में, या तो बहुत बारिश हुई थी और एक बड़ा पत्थर माउंट आबू में ही रोड पर गिरा, रोड तो सारा रोड ब्लॉक हो गया और आप सबको वापस जाना पड़ा, ऐसे है। फिर शांति वन में भट्टी रखी थी। खैर इस बार तो आप सभी आराम से पहुंच गए होंगे, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सब बिल्कुल आराम से पहुंच गए। सभी आ गए या कोई आने बाकी है? सभी आ गए तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो आप सबको भट्टी करने का यहाँ मौका मिला है। मधुबन में आना यही बड़े भाग्य की निशानी है। बहुत चाहते हैं कि हमारी भट्टी पांडव भवन में हो। पिछले 2 साल से तो हम भट्टी कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है चारों ओर, इसीलिए रहने की व्यवस्था इतनी नहीं है। नहीं तो उसके पहले 200-200 की भट्टी देख करते थे, अभी उसको रिस्ट्रिक्ट करके केवल 100 भाई बहनों की भट्टी रखी है क्योंकि अकोमोडेशन की कमी है। तो आप सभी अब पहुंच गए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक मुबारक मुबारक। मधुबन में आना माना अपनी तकदीर को जगाना। आप में से कोई ऐसे है जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं? वैसे तो पहले तो रहते ही होंगे, ज्ञान सरोवर शांति वन बनने से पहले तो मधुबन पांडव भवन में रहते होंगे, लेकिन कई नए भी होंगे। तो जो पहली बार पांडव भवन में रहेंगे वो हाथ उठाएं। अच्छा का बहुत है। और जो पहले भी रह चुके हैं पांडव भवन में वो हाथ उठाएं। अच्छा, क्योंकि अभी तो जो भी आते हैं चार धाम की यात्रा करने पांडव भवन आते हैं, सवेरे आते हैं शाम को चले जाते हैं, परंतु आप सब यहाँ 3-4 दिन रहेंगे और पूरा पूरा लाभ लेंगे, अमृत वेले का भी लाभ लेंगे, सुबह शाम चारों धाम की यात्रा भी करेंगे, बाबा को पत्र भी लिखेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे आपके जीवन में कितनी रियलाइजेशंस, कितनी महसूसता बढ़ती जा रही है। और जो भट्टी का नाम भी रखा है उड़ती कला या डबल लाइट योग तपस्या भट्टी, तो अभी की मांग यही है क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। दुनिया में चारों ओर दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, युद्ध का माहौल है, और उसी बीच महंगाई और साथ साथ इतनी सारी समस्याएं भी बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे बीच, इसी के बीच में बाबा के बच्चों को ये चैलेंज है कि ये सब होते हुए भी डबल लाइट रहना, क्योंकि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जिस सत्य ज्ञान के आधार से हम अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बना सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत भक्ति की, बहुत पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्राएं गंगा स्नान न जाने क्या क्या किया होगा, और बुद्धि में यही था कि बस भगवान से कुछ मिल जाए, कुछ अल्पकाल की प्राप्ति हो जाए, थोड़ा साक्षात्कार हो जाए, तो इच्छाएं बहुत थी लेकिन प्राप्ति नहीं थी। भटक रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, और यहाँ हम कहते हैं भगवान हमारे पास आया है। हम भगवान से मिलेंगे या भगवान हमसे यहाँ आकर के मिलेगा ये भी कुछ पता नहीं था, है ना? हम जाकर भगवान से मिलेंगे या भगवान यहाँ आकर हमसे मिलेगा कुछ पता था क्या? कुछ भी पता नहीं था, लेकिन घर बैठे भगवान मिल गया। कई अपना अनुभव सुनाते, जब हम पूछते हैं ना उनसे कि आप कैसे ज्ञान में आए, तो हर एक अपना अपना अनुभव सुनाता है, मैं कैसे ज्ञान में आया, एग्जीबिशन देखी, मेला देखा, दादी जी से मिला, दादी से मुझे टोली मिली, दृष्टि मिली, मुझे शांति का अनुभव हुआ, मतलब जो भी कहते हैं, तो अलग अलग अपना अनुभव सुनाते हैं कि आप कैसे ज्ञान में आए, कौन सी बात आपको ज्ञान में खींच के ले आई, तो अलग अलग अपना अनुभव सुनाते हैं। और मैं तो इस नशे से सुनाती हूँ कि मैं कैसे ज्ञान में आई। बताया ना, 12 साल की थी तो मैं अपनी लौकिक माँ के साथ बाबा से मिलने आई। उसके पहले कभी सेंटर पर नहीं गई थी, लेकिन बाबा से मिलने के लिए आई मुंबई में। मैं भी मुंबई की हूँ, कुलाबा सेंटर की। तो उस समय तो वाटरलू मेंशन था मुंबई में, एक ही सेंटर था। तो बात अब 1959 दिसंबर या 60 जनवरी होगा, तो बाबा की गोद में गई, क्योंकि उस समय बाबा की गोद में जाते थे। तो जैसे बाबा की गोद में गई, तो बाबा ने पहले जाते ही बाबा ने ये वरदान दिया। गोद में गई और बाबा ने पहला वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा ने मुझे वरदान दिया। हाँ, तो मुझे अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि मुझे सच्चा पिता मिल गया। तो ब्रह्मा बाबा को देखकर मुझे वो पिता की फीलिंग आई, क्योंकि लौकिक में मैं 3 दिन की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ उनका, बहुत यंग थे, मैं पहली संतान ही थी, और उनकी डेथ हुई। तो पिता को तो देखा नहीं, लेकिन बाबा को देखा और बाबा ने ये वरदान दिया। तो मैं बड़े नशे से कहती हूँ कि मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ। तो देखो, मधुबन में बाबा के बच्चे आते हैं, फिर तो बहुत कुछ अनुभव है कि कैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची तुम को बाबा विदेश भेजेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी मुंबई में, कॉन्वेंट स्कूल तो मुंबई में बहुत है, तो इंग्लिश में बाबा के आगे भाषण किया। तो बाबा बहुत खुश हुए, क्योंकि बाबा देखते थे छोटी छोटी कुमारियाँ अगर इंग्लिश में भाषण करती है तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया, तो बाबा ने मुझे उस समय वरदान दिया कि बाबा आपको विदेश भेजेगा। तो देखो वरदान के पीछे वरदान मिला। फिर तीसरा वरदान मुझे मिला जब मैं इंटर साइंस में थी, तो उस समय डिसाइड करना था कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथमेटिक्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, जो कुछ लेना है। तो मुझे तो क्योंकि घर में सब कह रहे थे कि तुम डॉक्टर बनो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, ये 67 की बात है, कि बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा ने मुझे पत्र में डायरेक्शन लिखा, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है, तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, ये बाबा ने कहा था। तो मैं मधुबन भी कई बार आई साकार बाबा के समय, और बाबा को एक दिन मधुबन जब जाने का दिन था तो मेरी इच्छा नहीं हुई वापस जाने की मुंबई। मैं कहती थी मुंबई मायावी नगरी है माया है माया, मुझे मुंबई में वापस नहीं जाना है, यहाँ रहना है। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, बच्ची तुम जाओ पढ़ाई अच्छी करो और फिर एक दिन बाबा आपको यहाँ बुलाएगा और यहाँ रखेगा। तो देखो सारे वरदान जो बाबा ने हमको दिए साकार में वो सब सिद्ध हो गए। और अभी तो 50 वर्षों से मैं मधुबन में रह रही हूँ, तो ये भी मेरा सौभाग्य है। और सभी बाबा मम्मा दादियों की पालना ली है, मुंबई में भी ली थी, स्कूल जाती थी, पहले सेंटर जाती थी फिर स्कूल जाती थी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, तो वो भी सब दादियाँ देखती थी तो बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार मिला सारे यज्ञ का परिवार का। तो मैं भी अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो मधुबन में आना ही बड़ा भाग्य की निशानी है, तो रहना तो कितने बड़े भाग्य की निशानी है। लेकिन सचमुच दुनिया की निगाहों से दूर जब हम मधुबन में आते हैं तो महसूस करते हैं कि हम अपने एक सच्चे घर में पहुंच गए। बाबा एक यहाँ फोटो था बाबा का, जिसमें बाबा खुली बाहों से बच्चों का आह्वान कर रहे हैं और बच्चों को कहते हैं बच्चे आओ मधुबन में आकर के विश्राम पाओ। तो आप सब उस दुनिया की कोलाहल से दूर निकल करके 3-4 दिन इस शांति के वातावरण में रहेंगे और इसी का पूरा आनंद लेंगे। जो बाबा कहते हैं ना कि यहाँ बादल भरने आते हैं और बादल भर कर फिर जाना है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आते हैं तो चार्ज होकर के फिर जाना है। तो इसीलिए आप सब यहाँ बैठे करने आए हो। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वातावरण में हम डबल लाइट रहें। तो कैसे रहेंगे डबल लाइट? डबल लाइट का बाबा अर्थ बताते हैं ना, एक है हल्कापन, लाइट इंग्लिश शब्द है जिसके दो अर्थ है, एक लाइट माना हल्का, हल्का लाइट, लाइट और हैवी, तो लाइट माना हल्का, और दूसरा लाइट माना प्रकाश। तो बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चों को हल्का भी बनना है और वो प्रकाश स्वरूप का भी अनुभव करना है। आत्मा तो है ही प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप कहते हैं, तो आत्मा जो ज्योति स्वरूप है वो ज्योति का हमें अनुभव कैसे होगा? जब हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये देह तो मोटा रूप है, और जब हम ये महसूस करते हैं मैं आत्मा या भृकुटि के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ, तो सहज ही आत्मा अपने आप को हल्का महसूस करने लगती है और प्रकाश स्वरूप महसूस करने लगती है। और जब तक आत्मा प्रकाश स्वरूप और हल्कापन नहीं महसूस करती तब तक बाबा की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि मन और बुद्धि पर कितना व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वो बोझ हटे तब तो हल्कापन महसूस हो, तो बोझ कैसे हटेगा? जब हम इनसे न्यारा बनेंगे। परिस्थितियां तो बढ़नी है, हम परिस्थितियों को तो रोक नहीं सकते ना, वो तो और दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन और समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, दुख अशांति कोलाहल चिंता मारा मारी बेईमानी भ्रष्टाचार, ये सब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उसके बीच में रहते हुए बाबा कहते हैं घर बार भी नहीं छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़नी है, सब कुछ निभाना भी है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हल्का रहना। ये कैसे रह सकते हैं? जब हम न्यारे और प्यारे बनेंगे। न्यारे बनकर प्यारा बनना है, प्यारा बनकर न्यारा नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। तब डबल लाइट बन सकते हैं। पहले न्यारा, क्योंकि मैं आत्मा अकेली हूँ। आत्मा जब परम धाम से आई तो अकेली आई ना, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे लेकिन आई तो अकेली ना। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजाने लिए परम धाम से आई अपने अपने समय पर। इसलिए जब समय पर पाठ बजाने आए, अब पाठ पूरा हो रहा है, अभी वापस जाना है। 84 जन्मों का पाठ हमारा पूरा हुआ, वापस जाना है, हमारी रिटर्न जर्नी है। आपका एक टॉपिक भी है रिटर्न जर्नी, तो ये रिटर्न जर्नी हमारी है ज़रूर, क्योंकि जो भी आए हैं वो रिटर्न टिकट तो लेकर ही आए हैं ना। इस सृष्टि पर आए, जन्म लिया, तो एक दिन तो शरीर छोड़ेंगे ना, कि अमर रहेंगे इस शरीर में? कोई अमर नहीं रहता। देवताओं ने भी तो शरीर छोड़ा, तो हम भी तो शरीर तो छोड़ेंगे, लेकिन कब छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, वो कुछ पता नहीं। पता है क्या? कुछ भी पता नहीं। तो बाबा ने हमें अंत का जो पेपर होगा उसको भी बाबा ने बता दिया है कि अंत का पेपर तो एक सेकंड का होगा, एक सेकंड का होगा, बस एक ही क्वेश्चन होगा, हाँ या ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते ना, हाँ या ना लिखना है, तो वो एक ही क्वेश्चन होगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा कि अंत में किसकी याद आई, बाबा की याद आई या देहधारियों की याद आई या कोई और बात की याद आई? तो अंत में किसकी याद आई वो हमारी परीक्षा होगी। लेकिन अंत में केवल बाबा याद रहे और कोई नहीं, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास हो चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। जैसे एक विद्यार्थी होता है, अगर सारा साल उसने पढ़ाई नहीं की और सोचेगा अंत में पढ़ लूँगा, एक महीने के अंदर पढ़ लूँगा या 8 दिन में पढ़ लूँगा, वो नहीं कर पाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में अगर पढ़ने की कोशिश भी करेगा तो जो याद है वो भी भूल जाता है, भूल जाएगा। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अशरीरीपन का भी अभ्यास चाहिए, क्योंकि उस समय एक सेकंड में आत्मा जैसे मक्खन से बाल शरीर से निकल जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा का हुआ, बिल्कुल कष्ट नहीं, एक सेकंड में बहनों को पता ही नहीं चला, दादी जी को पता ही नहीं चला कैसे आत्मा उड़ गई। तो देखो, वो अंत में केवल एक बाबा याद रहे और कोई नहीं, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और बहुत काल का अभ्यास होगा तो एवर रेडी रह सकेंगे, है ना। जिसने पढ़ाई अच्छी कर ली है तो उसको कोई डर नहीं है, कभी भी परीक्षा आ जाए वो तैयार है ना, वो सदा एवर रेडी है, सदा तैयार है, कभी सरप्राइज टेस्ट भी आती है, तो वो हर टेस्ट के लिए वो तैयार होता है। तो इसलिए बाबा ने तीन शब्द दिए। पहला शब्द क्या दिया है? अचानक। और दूसरा शब्द दिया है, दूसरा क्या शब्द दिया है? एवर रेडी, सदा तैयार। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, इन तीनों का आपस में संबंध है। दुनिया में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पेपर में क्या आने वाला है वो पता नहीं, लेकिन किस दिन वो परीक्षा होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कितने घंटे का पेपर है, हाँ वो सब पता चल जाता है। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चंस क्या आएंगे, पेपर क्या होगा, प्रश्न क्या होंगे, वो पता नहीं है, बाकी सब पता है। और यहाँ प्रश्न क्या है वो पता है। क्या है प्रश्न? कि अंत में किसकी याद रहे, यहाँ तो कहाँ टिक मार्क करना है, केवल एक बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई याद आ गया फेल। तो प्रश्न पता है, लेकिन वो कब होना है, कैसे होना है, कहाँ होना है, वो अंत घड़ी वो पता है, वो पता नहीं, लेकिन होना जरूर है। तो इसीलिए अचानक होना है, उसके लिए एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अशरीरी बनने का बहुत काल का अभ्यास। और वो बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय हर मुरली में सुनाते रहते हैं, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान, मैं आत्मा राजा, मैं आत्मा करावनहार, इस इंद्रियों द्वारा के द्वारा कराने वाली मैं राजा, तो ये आत्मा हूँ और इस इंद्रियों का मालिक हूँ, मालिक बनकर बैठूँ और एक सेकंड में न्यारी हो जाऊँ। एक सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अंत में एक सेकंड का ही क्वेश्चन होगा, तो वो एक सेकंड में हो जाऊँ, वो अभ्यास हमको पहले से ही होना चाहिए। तो जैसे ही हम बाबा की याद में बैठे, एक सेकंड में न्यारे हो जाए, समय नहीं लगे। हम तो दादियों को देखते थे, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जैसे बिस्तर पर लेटती थी, अभी सोना है तो एक सेकंड में नींद आ जाती थी। रात को हम दादी के पास जाते थे, दादी मुरली पढ़ती होती थी, तो हम बहनें, थोड़ी छोटी थोड़ी बहनें मधुबन की, जाके बैठती थी दादी के आगे, और दादी हमको किसी को कहती थी कि चलो आप मुरली सुनाओ, तो हम मुरली सुनाना शुरू करते थे और मुरली सुनाते सुना रहे हैं, और दादी को तो नींद भी आ गई एक सेकंड में। तो इतनी हल्की रहती थी दादी, जो बात मत पूछो, जबकि इतना कारोबार था, इतना यज्ञ का बोझ था। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे। साकार में हमने दादियों को देखा, कैसे न्यारे और प्यारे रहे, हाँ कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते गए, इतना कारोबार होते हुए भी, क्योंकि वो न्यारेपन का उनको जो अभ्यास था, इसीलिए कर्मातीत अवस्था होती गई और बिल्कुल जैसे उपराम होते गए। तो हम सबको ऐसा ही होना है, परंतु उसके लिए क्या करना होगा, ये बोझ बाबा को देना होगा। तो रात को जब सोते हैं सारा बोझ बाबा को देते हैं, जो सारा बोझ बाबा को देते हैं, हाथ उठाओ, सब देते हैं, श्योर, सच बताओ, बाबा को सारा बोझ देते हैं या थोड़ी चिंता करते करते फिर सोते हैं तो नींद आती नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है नींद करने में, या तुरंत आती है? जिनको तुरंत नींद आती है वो हाथ उठाओ, अच्छा, और जिनको बहुत समय लगता है वो भी होंगे। तो क्यों समय लगता है? अशरीरी होने में समय लगता है, तब लाइट रहने में समय लगता है। तो बाबा को बोझ दे दो, एक सेकंड में नींद आ जाएगी। बाबा की कहावत भी है, रात गई बात गई। रात हुई तो जो भी बात है बाबा को दे दो, सवेरे उठो अमृत वेला एकदम फ्रेश। इस अनुभूति को हम हर बार महसूस करें। लेकिन डबल लाइट रहने के लिए ये बोझ बाबा को देना बहुत ज़रूरी है। और बाबा तो कहते हैं बच्चे यूज़ मी, बाबा को यूज़ करो, बाबा को यूज़ करो। कैसे यूज़ करो? जैसे तो देखते हैं रोड पर वो कचरे के डब्बे होते हैं, तो कचरे के डब्बे में क्या लिखा रहता है, वहाँ ऊपर में पता है क्या लिखा रहता है? यूज़ मी, माना मुझे यूज़ करो, इसमें डालो, एक कचरा जो है इसमें डालो। फिर उसमें होता है कि सूखा कचरा किसमें डालना, गीला किसमें डालना, आजकल तो वो भी है। तो और बाबा कहते हैं यूज़ मी, ये सारा बोझ मुझे दे दो। तो मैं कई बार देखती हूँ बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं। अब ट्रेन से जैसे नीचे उतरे तो लगेज तो बहुत होता है, अब लगेज होता है तो कूली करते ना, हाँ कूली बुलाते हैं कूली को। तो कूली को सामान देते हैं, तो कूली कैसे लेता है सामान? पहले एक तो एक पेटी रखेगा सिर पर, फिर उसके ऊपर दूसरा रखेगा, फिर तीसरा भी रखेगा, फिर यहाँ थैला लेगा, फिर यहाँ थैला लेगा, पीठ पर लेगा, फिर कुछ और होगा कहेगा ये भी लाओ। हम सोचेंगे कि अरे ये कैसे उठाएगा इतना सारा सामान, और वो कहता लाओ, क्योंकि उनको बैलेंस बनाना है। और वो बैलेंस बनाने लिए यहाँ भी रखेगा और सिर पर भी रखेगा, पीठ पर भी रखेगा, और वो तो दौड़ता जाएगा और हम पीछे करते जाते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा पर्स उठा करके तो भी हाँफते हैं और वो दौड़ता जाता है, क्योंकि अनुभवी हो गया ना उसका, उसकी हड्डियाँ मजबूत है। और हम लोगों की इतनी नहीं है, तो वो सब बोझ उठाकर भी हल्का रहता है। और हम थोड़ा भी उठाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत हो गया, तो हम डरते हैं कितना उठाएगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मुझे बोझ दे दो। अब हम समझते हैं बाबा को इतना बोझ कैसे देंगे, हाँ इतना बोझ बाबा को हम कैसे देंगे। बाबा कहते हैं डरो मत, सागर में किचरा डालते हैं तो सागर सोचते हैं कि ये सागर किचरा कैसे उठाएगा, वो तो बेहद है। और सागर क्या करता है, कैसे वो उठाता है सब कुछ, जो काम की चीज़ है वो अपने अंदर समा लेता है, और जो बेकार चीज़ है वो किनारे पर फेंक देता है ना। सागर का तो यही काम है, जिसमें हम चित्र में दिखाते हैं समाने की शक्ति, जो काम की चीज़ है वो अंदर में ले लेता है और जो बेकार है वो किनारे फेंक देता है। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, जो अगर काम की चीज़ है उसे सीख लो, शिक्षा ले लो, और जो बेकार है तो दो कान किस लिए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसको अंदर में मत रखो, क्योंकि इससे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। और व्यर्थ संकल्प किस प्रकार से आते हैं, ये क्यों ऐसे हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, न जाने कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा तीन बिंदी की बात सुनाते हैं, तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये तीन बिंदी लगाकर डबल लाइट बन जाना है। तो व्यर्थ को कैसे समाप्त करना है ये बाबा हमें सिखाते हैं। डबल लाइट बनना है, हल्का बनना है। देखो हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है ना, जो पेट्रोल डालते हैं हवाई जहाज में, वो बिल्कुल हल्का होता है, इतना हल्का होता है। हम डीजल डालते हैं कितना भारी होता है, पेट्रोल भी डालते हैं थोड़ा तो भारी है, लेकिन हवाई जहाज का जो पेट्रोल, इतना पेट्रोल लेता है जो यहाँ से लंदन तक जाता है नॉनस्टॉप, यहाँ से न्यूयॉर्क जाता है प्लेन नॉनस्टॉप, इतने हजारों मील इतना फ्यूल होगा ना, इतना पेट्रोल होगा, लेकिन कैसे उड़ता है, क्योंकि उसका पेट्रोल बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। तो कैसे पेट्रोल बनता है, एविएशन फ्यूल कहते हैं उसको, वो हमने देखा है। हम आसाम गए थे, आसाम में रिफाइनरीज है, ये जो क्रूड ऑयल, जो तेल जो जमीन से निकलता है, वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का की रिफाइनरीज है वहाँ। तो हमको वो दिखाया, क्योंकि वहाँ हमारा प्रोग्राम था आसाम में, तो वो हमको दिखाया कैसे ये तेल जो इतना काला काला तेल निकलता है, वो कैसे हवाई जहाज का भी तेल बन जाता है। तो उसमें बताया 16 चीज़ें होती हैं जो वो तेल से निकालते हैं और उसको धीरे धीरे कैसे हल्का करते हैं। वो 16 चीज़ें भी काम की होती है, ऐसे नहीं कि काम की नहीं होती है, वो उनको कहते हैं एक्सेसरीज। तो पहले पहले क्या निकलता है, तो जो काला काला निकलता है वो उसका डामर बनाते हैं। डामर होता है ना, जो रोड बनाते हैं वो डामर कैसा होता है। तो ये सब पेट्रोल से ही तो निकलता है, तो जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से निकला इतना काला काला, तो वो बोला अभी ये जाएगा और ये रोड बनाने के काम आता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या निकली, वैक्स निकला, वैक्स जिससे मोमबत्तियाँ बनती है, वो भी उसी से ही निकलता है। तो मोमबत्तियाँ निकली, इतनी सुंदर सुंदर मोमबत्तियाँ बनी हुई थी, तो कहा ये मोमबत्तियाँ फिर बेचते हैं। तो ऐसे इतना तो टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ देखूं क्या क्या निकला है। तो फिर उसमें से और भी जो तेल निकलता है, उसमें से साबुन बनता है, ये बनता है, बहुत कुछ चीज़ें बनती है। और तो मैंने कहा अभी ये सब टाइम नहीं है, तो लास्ट में जो एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज का फ्यूल बनता है, वो दिखाया बिल्कुल जैसे पानी की तरह। पानी भी भारी है, पानी भी भारी होता है, थोड़ा पकड़ो तो लगता है ना भारी है, वो ऐसा था, पानी से भी भारी, पानी से भी हल्का, इतना वो पेट्रोल होता है। अब बाबा कहते हैं तुमको उड़ती कला में जाना है, डबल लाइट बनना है, तो डबल लाइट माना कितना हल्का होना चाहिए, हल्का होना है ना, तो कैसे होंगे हल्के, कैसे होंगे हल्के, हम हल्के होंगे बाबा को बोझ देकर। बस छोटा बच्चा होता है ना, अभी उसको कोई चीज़ दी है पकड़ने के लिए, अब वो पकड़ नहीं पाता है, अभी छोटा है, चले या चीज़ पकड़े तो वो पकड़ नहीं पाता है, तो मम्मी को कहेगा मम्मी तुम उठाओ, बच्चे माँ को दे देगा तुम उठाओ, क्योंकि वो पकड़ नहीं सकता है। तो बाबा भी तो माता पिता है, तो इसीलिए बाबा को देखकर सो जाओ, बाबा ये आप संभालो। तो परंतु कई बच्चे ये नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, समझते हैं बाबा को इतना बोझ क्यों दे, और दूसरा क्या समझते हैं, बाबा के तो कितने बच्चे हैं, बाबा के तो कितने बच्चे हैं, सारे बाबा को बोझ दे तो बाबा कैसे उठाएगा। तो हमने बाबा को क्या समझ लिया, मनुष्य समझा है, मनुष्य भी उठा लेता है, वो कोली उठा लेता है, तो बाबा क्यों नहीं उठाएगा, वो तो सागर है। तो इसीलिए कभी भी संकोच नहीं करो कि हम बाबा को कैसे दे, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं समझो, और बाबा की जिम्मेदारी समझेंगे तो बाबा उसको हल्का कर देगा। अभी देखो कई ऐसे भाई बहने यहाँ आए हैं, तो बाबा को बोझ देकर आए हो ना, अभी घर में कुछ कारोबार होगा, दफ्तर में या दुकान में या बिजनेस में, कितनी बातें होगी, आपको कितनों ने कहा होगा भाई आप मत जाइए, ये काम है, ये काम बिगड़ जाएगा, आप चले जाएंगे तो आप जाएंगे 5-6 दिन लगेगा ना, अभी कल निकले आज पहुँचे, अभी 4 दिन और फिर पहुँचेंगे, 1 हफ्ता तो लग जाएगा वापस जाते जाते। तो आपको कईयों ने कहा होगा आप मत जाओ, पर आपने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, क्या कहा सब सबको जिन्होंने कहा मत जाओ, ये काम है, वो काम है, वो काम है, तो आपने क्या कहा उनको, हाँ हाँ बाबा देख लेगा, घबराओ मत, हाँ मैं तो बाबा के घर जा रहा हूँ, बाबा देख लेगा, बाबा संभाल लेगा। तो आप वापस जाएंगे तो बाबा संभाल लेगा ना, कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हाँ जो समस्या थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी मेरे यहाँ आने से, वो हाथ उठाओ, कोई नहीं, गड़बड़ नहीं होगी, आप यहाँ आ गए हो, और ही अच्छा हो जाएगा, और ही अच्छा हो जाएगा, कई बार देखा और ही अच्छा हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि बस वो बोझ मुझे दे दो, मैं ठीक करूँगा। पर हम घबराते हैं, क्यों घबराते हैं? संशय, निश्चय की कमी। सचमुच देखा जाए ये निश्चय की कमी है। जब बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, तो एक बल एक भरोसा का अर्थ क्या है? एक बल, एक से ही बल लेना और एक को ही याद करना, एक से ही शक्ति लेना। अगर बुद्धि योग और जगह गया, माना एक से शक्ति नहीं ले रहे हैं, एक बल नहीं समझ रहे हैं। बाबा पर हम बलिहार गए हैं और बाबा हमारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं, तो हम कितना बलिहार गए हैं बाबा पर, ये हम अपने आप से पूछें। क्योंकि यही बाबा चाहते हैं। बाबा, ये उस दिन भी बाबा की मुरली थी ना, बाबा को कितने शब्द पसंद नहीं है, कौन कौन से शब्द बाबा को पसंद नहीं है, हाँ लिस्ट निकालो। कभी कभी, बाबा कहते कभी कभी क्यों, सदा। फिर दूसरा शब्द बाबा को कौन सा पसंद नहीं है, हाँ क्या, मेहनत। बाबा ने उस दिन कहा बाबा को मेहनत शब्द पसंद नहीं है, तो मेहनत, बच्चे और मेहनत, हाँ ये बाबा को पसंद नहीं। आधा कल्प तो द्वापर युग में, तो कितनी मेहनत की, दो युग तक मेहनत ही की ना, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की। अभी मेहनत की जगह मोहब्बत, तो एक शब्द है कभी कभी। दूसरा शब्द बाबा फॉरेनर्स को कहते थे, इंग्लिश शब्द समटाइम, तो समटाइम। या फिर तीसरा शब्द बाबा कई बार कहते लेकिन, परंतु, ये परंतु आया लेकिन आया, माना कोई बहाना है, हाँ ये करना तो है लेकिन, तो बाबा को वो भी पसंद नहीं है। तो जो शब्द बाबा को पसंद नहीं है, वो हम बच्चों को भी पसंद नहीं होने चाहिए। इसलिए हर बात में बाबा क्या कहते, सदा। ये सदा शब्द सदा याद रखो, सदा। तो एक तो बाबा को बोझ देना है, दूसरा हाँ बाबा को सच्चा साथी बनाना है, तीसरा हल्का रहना है, और चौथा कि अब घर जाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना तो बड़ा सहज है, सन्यासी छोड़ के चले जाते हैं, हाँ परिवार बच्चे धंधा सब छोड़ के चले जाते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं छोड़ना भी कुछ नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, थोड़ा नया जोड़ दे बिजनेस में, नया जोड़ दे, बाबा कहते हैं वो भी नहीं करना है। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, नया जोड़ना भी कहीं नहीं है, फंसना तो बिल्कुल नहीं है, फंसना तो बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा कर्म भी नहीं करना है जो अभी कुछ और पाप बन जाए, वो भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक का 100 गुणा हो जाएगा। जब तक पता नहीं था तब तक तो एक का एक गुणा ही सजा थी, अब पता चला कि ये गलत है तो वो एक का 100 गुणा सजा हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं। तो फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, तो चौथा कौन सा शब्द है? हाँ चौथा शब्द है निभाना है, निभाना है। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो है ना, कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा नहीं हुआ है, तो नया कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं जोड़ना है। कई कहते हैं कि कैसे पता चले ये पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या नया बन रहा है, उसकी कसौटी क्या है, कैसे पता चले? अगर मेरे मन पर उसका असर आया, अगर उसका असर आया और हमने रिएक्ट किया, मानो ये नया हिसाब किताब बना, अगर मेरे मन पर असर नहीं आया और मैं आत्मा न्यारी प्यारी हो गई तो समझो ये मेरा हिसाब किताब चुकता हुआ। बड़ा अंतर है, क्योंकि तुरंत अगर असर आ जाता है, नाराज हो गए, हाँ थोड़ा गुस्सा आ गया या नफरत आने लगी, घृणा हुई, मन मुटाव थोड़ा हो गया, कुछ भी अगर हुआ माना हिसाब किताब बना, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं, न्यारे और प्यारे हो गए, उसको दिमाग तक रखा ही नहीं, एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया, मानो हिसाब किताब चुकता हुआ। तो समझना सहज है ना, हिसाब किताब चुकता होता है या नया बनता है। नया बनता तब है जब कोई विकार के वश हो गए, रिएक्ट किया, बदला लिया। और बाबा क्या कहते हैं, बदला मत लो, बदल के दिखाओ। अब कार्यों पर भी उपकार करो, बाबा अपना मिसाल देते, कितना उपकार किया मेरे पर बाबा पर, कितने गालियां दी बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा उपकारी बन करके उपकार करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, यार ये चार पट पर काट दो, एक पर जोड़ो। कौन से पर काटो? हा? पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, ये पर है, ये सब पर काटो। न पर मत पर चलो, न पर निंदा करो, न पर ग्लानी करो, परंतु कौन सा पर जोड़ो? पर उपकार जोड़ो। हमको हंसी आई, एक हम कहीं जा रहे थे तो कार में बैठे थे, पीछे ट्रक पर लिखा था, नहीं तो ट्रकों पर लिखा रहता है, बुरी नजर रखने वाले तेरा मुंह काला। लेकिन उस ट्रक पर हमने अलग ही सुन पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। देखो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये तो एक बद्दुआ हो गई, और बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला, तो ये तो जैसे उसको भी हमने दुआ दे दी। तो दुआ देनी है या श्राप देना है? दुआ देनी, हर एक को दुआ दो। तो दुआ कैसे देंगे? जब हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। तो वैसे तो आपका 3 दिन बहुत कुछ चलेगा, बहुत ही सुंदर आपका क्लासेस का प्रोग्राम है, आपको सारा बता दिया होगा। अभी हमारे बीच 2 छोटी कुमारियां हैं, वो थोड़ा सा डांस करेगी, वो कहती है बहुत इच्छा है उनकी हम डांस करें, क्योंकि इसके बाद फिर मधुरवाणी ग्रुप आएगा और आपका आपको आपका स्वागत गीत गाएंगे, और फिर उसके बाद आपको टोली मिलेगी। गुजरात सूरत, अच्छा सूरत वराचा, अच्छा मुझको।
को शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ।
लाडो
देखो, बाबा के घर में बाबा के बच्चों का कोई ग्रुप आए और उसमें मधुर वाणी ग्रुप गीत ना गाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम सबके बीच में आप सबका स्वागत करने के लिए, अपने प्यारे भाव व्यक्त करने के लिए एक बहुत सुंदर गीत लेकर मधुर वाणी ग्रुप उपस्थित हुए हैं। और देखो, गीत के बोल भी कितने मधुर हैं। कल्याणमय बाबा के बच्चे कल्याण वाले आए हैं, कल्याणमय बाबा के बच्चे कल्याण वाले आए हैं। तपोभूमि में तप करने की दिल में लगन लगाए हैं। तो ऐसे सुंदर भावों से भरा गीत सतीश भाई और हल्दर भाई हमारे बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप सभी के स्वागत में।
जैसे भी माँ को सलाम किया जा रहा था मातृशक्ति को, वैसे ही आज नर्सिंग डे है और हमारे हल्दर भाई हॉस्पिटल में इनका सम्मान हो रहा था, लेकिन आपका सम्मान करने के लिए यहाँ आ गए, इसलिए जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करें।
कल्याणमय बाबा के बच्चे कल्याण वाले आए, तप भूमि में तप करने की दिल में लगन लगाए। प्रेम हार ले बाबा भी अपने बाएं बढ़ाए, आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए। स्वागतम शुभ स्वागतम हो, आ, 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 दीदी कर रही कल्याण है, कल्याण में अलका दीदी कर रही कल्याण है, राजेश्वरी दीदी जी जैसी देती मान सम्मान है, राजेश्वरी दीदी जी जैसी देती मान सम्मान है, हाँ देती मान सम्मान है, सुख शांति संतोष सुमन हो, सुख शांति संतोष सुमन संतोष दीदी खिलाए हैं, आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं, स्वागतम शुभ स्वागतम हो।
हम चाहेंगे अलका दीदी आगे आ जाएं, आइए दीदी।
मधुबन के आंगन में बाबा आज स्वागत करते हैं, मधुबन के आंगन में बाबा आज स्वागत करते हैं, आओ बच्चे अपने घर में विश्राम करो ये कहते हैं, आओ बच्चे अपने घर में विश्राम करो ये कहते हैं, गुणगान करो ये कहते हैं, माँ तीसरा बुराज से आके हो, महातीर्थ अबुराज पे आके पूर्ण मुहूर्त पाए हैं, आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं, स्वागतम शुभ स्वागतम हो। साधना कर संपन्न हो घर चलना है, डबल लाइट की साधना कर संपन्न हो घर चलना है, 14 वर्ष वाली भट्टी इन 4 दिनों में करना है, 14 वर्ष वाली भट्टी इन 4 दिनों में करना है, इन 4 दिनों में करना है, शशि दीदी शीलू दीदी हो, शशि दीदी शीलू दीदी शकुंतला दीदी ये सुनाए हैं, आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं, कल्याण में बाबा के बच्चे कल्याण वाले आए हैं, तपोभूमि में तप करने की दिल में लगन लगाए हैं, प्रेम हार ले बाबा भी अपनी बाहें बढ़ाए हैं, आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं, स्वागतम शुभ स्वागतम